दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियां। एरिक भाई, सिस्टर गायत्री, इस बहुत रोमांचक दृष्टि से सृष्टि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। गायत्री बहन, शुक्रिया, आपके साथ जुड़कर मुझे भी अच्छा लग रहा है। एरिक भाई, हम आपको एक अभियान पर लेकर जा रहे हैं जहां हम स्वर्ग के द्वार तक जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमें नए संसार तक लेकर जाएं। जैसा कि आप समझते हैं, यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से कल्पना और आभास पर आधारित है। इसका सीइंग पार्ट अर्थात देखने वाला भाग अति महत्वपूर्ण है। और आपसे मेरा सवाल होगा कि अगर मैं आपको कहूं कि सत्युग, नई दुनिया, तो आपके व्यक्तिगत अनुभवों, साक्षात्कारों, योग के अनुभवों के आधार पर आप क्या महसूस करते हैं, क्या सुनते हैं, किस सुगंध का अनुभव करते हो? गायत्री बहन, सबसे पहले तो मैं किस प्रकार देखती हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे मन और हृदय से देख पाने की क्षमता ही एकमात्र जरिया है। और अगर मुझे मेरे मन और हृदय से देखना है, तो मैं अपनी आत्मा में क्या देखूंगी? शायद वह वही होगा जो मैं दूसरों की आत्मा में देखूंगी। और मुझे लगता है कि हर एक आत्मा में स्वर्णिम युग की रूपरेखा स्वाभाविक रूप से है। और अगर जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वह सत्य है, तो प्रत्येक आत्मा ने अपने जीवन काल में कभी तो उस स्वर्णिम युग की अवस्था का वास्तविक जीवंत अनुभव किया होगा। अगर मैं वर्तमान संसार को देखूं और उसको स्वर्णिम युग के वास्तविक रूप से तुलना करके देखूं, तो स्वर्णिम युग की कुछ झलक परिकथाओं में मिलती है, जहां हमें बताया जाता है कि बहुत बहुत पहले की बात है और उस कहानी का अंत बहुत सुखदायी होता है। मैं परिकथाओं को इस रूप में देखती हूं कि वे आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने की एक विधि है, और उनमें बहुत शक्तिशाली संदेश भी समाहित होता है कि इस बहुत बहुत पहले की बात और सुखदायी अंत के मध्य हम अपनी स्वर्णिम युग की अवस्था का अनुभव करते हैं, जिससे हम स्वयं को उसी अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, फलस्वरूप उस संसार में रहें जो बेहतर होगा। और मैं बहुत सुंदर पंक्तियों के बारे में सोचती हूँ जिन्हें मैंने कहीं पढ़ा था, और वास्तव में ये थोड़ा सा विवरण भी देती हैं, क्योंकि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें हम नए स्वर्णिम युग को बनाने का नहीं सोचते हैं, लेकिन इन पंक्तियों ने मुझे एहसास करवाया है कि वास्तव में इसी संसार में स्वर्णिम युग की अवस्था की रूपरेखा है। और वे पंक्तियां इस प्रकार हैं: धूल में ही प्रतिभा और प्रताप बसता है, लेकिन प्रतिदिन की चुनौती से हमें फायदा होगा। ये बहुत बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन इसमें शांति की पुनरावृत्ति प्रतिदिन होती है। और इसी प्रकार मैं स्वर्णिम युग की अवस्था को अपने मन और हृदय से देख सकती हूँ, और इसे मैं प्रत्येक मनुष्यात्मा में समाहित रूपरेखा के रूप में देखती हूँ।
That the blueprint of this golden aged state of being can, you know, we can reconnect to. And the lines are, in the dust lies genius and glory. But everyday talent will pay. It's only the old, old story, but the piece is repeated each day. And so that's how I tend to see the golden aged state with my mind and my heart, and to see it as a blueprint intrinsic in every human soul.
Eric bhai, वाह, अच्छा, आप इसके बारे में सोचते हैं। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। वास्तव में वास्तविकता से हम दूर हैं। बस पोस्टर पर लक्ष्मी नारायण के आसपास पंछियों को उड़ता देखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमारे भीतर वह योजना या रूपरेखा पहले से ही है और आप उस रूपरेखा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ कर देखते हो। हमें उसे इमर्ज करना होगा। हमें कब इस बात का एहसास होगा कि हम उस रूपरेखा से या ब्लूप्रिंट से जुड़े हैं? न कि केवल तब जब हम बाबा की कोई मुरली सुनते हैं या जब हमें अतिरिक्त टोली प्राप्त होती है जो कि हमारे श्रेष्ठ स्वरूप को सक्रिय कर देती है। हमें कब मालूम पड़ेगा कि हम उस ब्लूप्रिंट से जुड़े हैं? सिस्टर गायत्री, मेरे लिए व्यक्तिगत यही कहूंगी कि यह अनुभव क्षणिक होता है। वह ब्लूप्रिंट या रूपरेखा अपने संपूर्ण स्वरूप में है और इस यात्रा में होता क्या है कि मेरी आध्यात्मिक प्रक्रिया के दौरान विभिन्न समय में मैं उस ब्लूप्रिंट से जुड़ती हूँ और जिस उदाहरण का मैं सोचती हूँ वह है गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को कैसे जाना था, कैसे सोचा था? उसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचना कैसे प्रारंभ किया? शायद जो सेब उसके सिर पर आकर गिरा और अचानक उसे ख्याल आया कि इस सेब को गिरने का कुछ तो कारण होगा, तो उस घटना से उसके भीतर कुछ जागृत हुआ जिसके कारण उसके फिर आगे खोज आरंभ की। यह ब्लूप्रिंट ऐसा नहीं है कि इसे प्रकट करने के लिए हम युक्ति पूर्वक बैठ कर कहें कि अब मैं अपनी बुद्धि में यह योजना बनाऊं कि स्वर्णिम युग की अवस्था को कैसे प्रकट करना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट मेरे भीतर है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अचानक ही वे पल आते हैं जब कुछ हो जाता है, हम जागृत हो जाते हैं और उसी एक झलक मिलती है, और इसी तरह से मेरी यात्रा में मुझे ये झलकियां मिलती रहती हैं। और अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वे कैसे घटित हुआ। एरिक भाई, हाँ जरूर, उससे शुरुआत करें, फिर आपसे दूसरे सवाल पूछने भी हैं। गायत्री बहन, आप पहले सवाल पूछ सकते हैं। एरिक भाई, नहीं, आप पहले बताएं कि वे कौन से छोटे छोटे उदाहरण हैं जो आपके मन में हैं। गायत्री बहन, जब मैं उन झलकियों के बारे में सोचती हूँ कि जैसे कोई सेब मेरे सिर पर गिरा या ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे भीतर कुछ जागृत कर दिया, तो यह तब था जब मैं राज्यों का कोर्स कर रही थी, जब मैं ज्ञान सुन रही थी, तो मैं सोच रही थी यह मुझे अपनी आंतरिक मौलिक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, विशुद्ध स्वरूप से जोड़ रहा है। बाद में मैंने सोचा कि यह केवल एक सिर्फ ब्लूप्रिंट या रूपरेखा के साथ जुड़ना नहीं था, बल्कि यह उस ब्लूप्रिंट से जुड़ना था जिसमें जीवंत स्मृतियां उपलब्ध थी। तो वे स्मृतियां उजागर हो रही थी। और यहाँ मैं थोड़ी कविता प्रयोग करना चाहूंगी। जब मैं ज्ञान सुन रही थी, वह ऐसा था जैसे इस ज्ञान ने मुझे अपने रंग में रंगना आरंभ कर दिया और इन स्मृतियों को उजागर करना आरंभ कर दिया, और इन स्मृतियों ने मेरे भीतर एक तस्वीर को पेंट करना शुरू किया। जैसे हम कहते हैं ना, दिव्य बुद्धि, तो मेरी दिव्य बुद्धि पेंट ब्रश बन गई। और जैसे जैसे स्मृतियां उजागर हो रही थी, पेंट ब्रश ने तस्वीर बनाई कि स्वर्णिम युग की अवस्था कैसी होगी। और फिर क्या हुआ कि जो मेरे लिए बहुत रोमांचक था, तो यह सब इनसाइट और फोरसाइट अर्थात मेरी समझ और दूरदर्शिता के संगम पर हो रहा था। ऐसा था जैसे कि मेरी इनसाइट भीतर जो कुछ भी ज्ञान मुझे मिल रहा था उसकी तस्वीर बना रही थी, लेकिन मुझे भविष्य में भी लेकर जा रही थी। और मैं आपको कुछ झलकियां बताऊंगी कि कैसे ये झलकियां मुझे दिखाई दी। जब मैंने राजयोग का पाठ पहली बार सुना, तो मैंने समय के बारे में सुना, संगम युग के बारे में सुना और तात्कालिक जो तस्वीर मेरे जहन में बनी, मुझे लगा अब मुझे शुभ अवसर है कि अब मैं समय के साथ अपना संबंध परिवर्तन कर सकती हूँ। फिर मैंने समय के साथ अपने संबंध को देखा तो पाया कि समय के साथ मेरा संबंध घड़ी से जुड़ा था और फिर मैं घड़ी के साथ संबंध से दूर होकर समय के साथ संबंध में आने लगी और ऐसा हुआ जैसे कि हर पल समय मेरा नया मित्र बन गया। मेरे लिए यह समझ बहुत अद्भुत थी कि समय मांगलिक है, समय परिवर्तनशील है और समय अति श्रेष्ठ है। जैसे कि मैंने यह देखना आरंभ कर दिया कि जैसे एक मिनट में पूरा संसार चक्रीय रूप में घूम रहा है और वह चक्रीय गति घड़ी की सुई की दिशा में थी और उस गति में मैं अपने उद्देश्य की पुकार सुन पा रही थी और मेरे लिए एक झलक थी कि उस समय को स्वर्णिम युग की अवस्था से देखने की। अचानक समय सबसे श्रेष्ठ वस्तु बन गई जिसे मैं मित्र के रूप में देख सकती थी। दूसरी झलक जिसने मुझे आकर्षित किया वह थी जीवित होने का एहसास। पहले हम जीवन के बारे में, जिंदा रहने के बारे में और जीवन जीने के तरीकों के बारे में बात करते थे। जीवित होने का एहसास मेरे लिए स्वर्णिम युग की अवस्था की झलक नहीं था। पहले भी मैंने आत्मिक स्थिति के बारे में सुना था, लेकिन जैसे कि मेरी आंखें बंद थी, जैसे मैं बंद आंखों से जीवन जी रही थी, घूम फिर रही थी, मैं विस्मृति की अवस्था में या अंधकार में घूम रही थी। जब मैंने आत्म अभिमानी अवस्था के बारे में सुना तो जैसे मेरी आंखें खुल गई और मैं स्वयं पर एक प्रकाश स्वरूप के रूप में एकाग्र कर पा रही थी और उसने मेरे भीतर एक आनंद का संचार किया, जीवित होने का आनंद। लेकिन मैं लंबे समय तक उसका अनुभव नहीं कर पाती थी, बस क्षणिक अनुभव होता था। फिर जब मैं विस्मृति और अंधेरे की अवस्था में वापस आ जाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, जैसे कि मेरा आनंद छीन लिया गया हो। यह आत्मिक स्वरूप की अवस्था और आंखें खोल कर रखना मेरे लिए बहुत अर्थपूर्ण था, क्योंकि यही वह समय था जब देखना मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मैं स्वयं को देख सकती थी, मैं पूर्णतया जीवंत अवस्था में थी और जब यह अग्नि जलती रहती थी तो खुशी बढ़ जाती थी और वह खुशी मेरी आंखों द्वारा औरों तक भी संचारित होती थी। मेरी इस जीवन में एक रोचक दौर भी था जब मैं सोचा करती थी कि सोऊं कैसे, क्योंकि अगर मैंने आंखें बंद कर दी तो मैं फिर से विस्मृति और अंधेरे की अवस्था में चली जाऊंगी। लेकिन फिर बाद में आंखें बंद करने के बाद भी उस खुशी का अनुभव करके सोना वास्तव में एक प्रकाश से भरा हुआ कमरा जैसा प्रतीत होता था और हम वास्तव में उस प्रकाश से परिपूर्ण स्थान तक ऊंचे उठ जाते थे। और एक बार मुझे याद है कि एक सुबह मैं सोकर उठी और अनुभव कर रही थी मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। और जैसे कि उन शब्दों की प्रतिध्वनि आ रही थी, हाँ आप जीवित हो, आप जीवित हो, अब खुशी का जीवन जियो। ये दो अनुभव थे स्वर्णिम युग की अवस्था के, एक परमात्मा के साथ का भी अनुभव हुआ और एक दूसरा भी हुआ जो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक संबंधों का भी अनुभव हुआ, मैंने स्वर्णिम युग के संबंधों की अवस्था देखी। एरिक भाई आपको यह बहुत पसंद आएगा, मैंने देखा संसार के रंगमंच पर बड़ी बड़ी दीवारें जिनमें पृथ्वी फर्श थी, आकाश छत था और बाकी के तत्वों ने इस वातावरण को तैयार किया हुआ था जो कि एक नृत्य कक्ष बनाने में सहायक था। लेकिन मेरे लिए स्वर्णिम युग के संबंधों में मुख्य तत्व है कि मैं लोगों को नियंत्रित नहीं करूं, कि वे वही करें जो हम चाहें और ऐसा करके आपसी संगतता को बढ़ावा दें और दूसरी बात, इन स्वर्णिम युग के संबंधों में अगर आप नृत्य करें तो मुझे इस बात के लिए अपनी तैयारी रखनी है कि अगर मैं किसी दूसरे से संवाद करूं तो मुझे उसकी अभिव्यक्ति के प्रति जागरूक रहना होगा। लेकिन इन संबंधों की रास में मेरे लिए सबसे सुंदर बात थी अंदाज और शिष्टता। और मेरे लिए अगर किसी संबंध में अंदाज और शिष्टता है तो उसकी ताल भी अंदाज और शिष्टता के अनुसार ही होगी। और स्वर्णिम युग की अवस्था का यह मेरे लिए सबसे आधारभूत बदलाव था। यह है संबंधों की ताल सीखने में निपुण होने का नृत्य सीखना। लेकिन इस ताल को दिव्य गीत से जुड़ने के लिए इसे ज्ञान से जुड़ना आवश्यक है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त करना सहज था। यह मुझे उस आधारभूत बदलाव के बारे में सिखा रहा था जो संबंध परक था। जैसे किसी भी नृत्य में आपको कुछ शिष्टाचार का पालन करना होता है, उसी प्रकार संबंधों में भी कुछ मर्यादाओं का पालन करना होगा। लेकिन मेरा पूरा ध्यान व्यक्तित्वों का तालमेल बिठाने में था, विचारों में समन्वय लाने पर था, विशेषताओं को आपस में मिलाने पर था और भावनाओं के एक रूप होने पर था। और मेरे लिए यही स्वर्णिम युग का संबंध है। और मैं यह नहीं कह रही कि मेरे साथ ऐसा सदा होता है, लेकिन वह ब्लूप्रिंट मेरे भीतर है कि किस प्रकार इस अंदाज और शिष्टता को संबंधों में हासिल किया जा सकता है। तो ये कुछ स्वर्णिम युग की अवस्था के बारे में मेरे अनुभव हैं, और जिस संसार में मैं रहती हूँ ये उसकी अभिव्यक्ति है।
Then the movements must be according to the rhythms of the style and the elegance in the relationships. And so I think that for me, this was the most fundamental shift of the golden age state of being, is to master the dance of learning the rhythms of relationships. But to let the rhythms be connected to the song divine, let it be connected to the teachings that I had access to, that was teaching me the profound shift that had to happen that was relational. And, you know, just as in a dance you have to follow certain etiquette, I realized that in relationships I have to follow certain codes of conduct. But the attention to me was on synchronizing personalities, harmonizing intentions, aligning specialties and fusing feelings. And for me, this is what a golden aged relationship is all about. And I'm not saying that it happens to me all the time, but what I'm saying, the blueprint is within me of how to achieve such elegance and style in relationship. So these are a few of my glimpses of what a golden aged state of being is, and also the expression of it in the world that I live.
Eric bhai, wow, aap bahut gehrai se is bare mein sochte hain. Ye sach mein sarahaniya hai. Aasha hai sabhi is baat ko samajh rahe honge, kyunki spasht hai yeh rango और पंछियों, आम का स्वाद और ताज के वजन के बारे में बातें नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके लिए ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक? गायत्री बहन, हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है, यह रूपरेखा हरेक मनुष्यात्मा में अंतर्निहित है, तो वह सत्व प्रधान और स्वर्णिम युग की अवस्था स्वतः प्रकट होती है, चाहे सृष्टि चक्र में कभी भी वे अपना प्रथम जन्म ले। एरिक भाई, हाँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि जिस प्रकार आप विवेक युक्त विधि से अपने विचार प्रकट कर रही हैं, कि वे किस प्रकार हमारे वर्तमान व्यक्तित्व की स्वर्णिम युग की अवस्था अनुसार पुनर्रचना करते हैं। मैं आशा करता हूँ हर कोई इसका आनंद ले सके, क्योंकि स्वर्णिम युग की समझ बहुत बार बहुत साधारण होती है, जैसे पंछी हमारे लिए गा रहे हैं, पेड़ों पर सुंदर फल हैं, देवता टहलते हुए सारा दिन तैरते हुए मुस्कुराते हुए। लेकिन जिस प्रकार आप बता रहे हो कि स्वर्णिम युग की रिकॉर्डिंग, वह ब्लूप्रिंट हमारे भीतर ही है, बस उस रिकॉर्डिंग के साथ स्वयं को जोड़ना है। गायत्री बहन, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ जानना कि स्वर्णिम युग का निर्माण अभी जारी है, और सिर्फ स्वर्णिम युग या भविष्य के बारे में सोचना और उसके निर्माण में सहायक नहीं बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। एरिक भाई, मुझे मालूम है बहुत से और भी सवाल होंगे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन समय को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि जो भी अनुभव आपने हम सबके साथ बांटा है, उसे आप मेडिटेशन कमेंट्री में समाहित करके हमें उस स्वर्णिम युग की अवस्था का अनुभव कराएं।
Of the future being based on the harmony of the style and, you know, the refinement of our relationships on the walls of your beautiful room that I did like very much. So how about we go into an experience with you for a few minutes?
And you want me to do a meditation commentary now?
Meditation commentary for a few minutes. Just sharing your thoughts while we reflect with you on that state of mind, state of being.
गायत्री बहन, मेडिटेशन कमेंट्री। अपने मन को शांत कर दें, अपनी कर्म इंद्रियों को भी शांत कर दें, और अपने तन को भी शांत कर दें। जब ये सब शांत हो जाते हैं तो कुछ न करें। इसी अवस्था में सत्य स्वयं ही आपके सामने प्रत्यक्ष होगा, ये आपके सामने आ जाएगा और आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, और आपका उत्तर है मुझे अपनी स्वर्णिम युग की अवस्था की आंतरिक रूपरेखा दिखाओ, मुझे आत्मा का दिव्य स्वरूप मेरे समक्ष प्रत्यक्ष करो। मेरे द्वारा उन कर्मों की अभिव्यक्ति करो जो अलंकृत हैं। मेरे भीतर केवल श्रेष्ठतम संकल्पों को ही उत्पन्न करो, और मेरे हृदय में केवल मौलिक एवं पवित्र भावनाएं ही हैं। और इस अवस्था में मैं पंछियों की मधुर ध्वनि सुन रही हूँ, और समस्त संसार के साथ मेरा समन्वय स्थापित है। ओम शांति।
एक्सप्रेस थ्रू मी एक्शंस दैट आर पोएटिक, क्रिएट इन मी थॉट्स that are elevated, and let my heart be consumed with feelings that are pristine and pure. And let me, in this state, listen to the sweet melodious sounds of birds singing. And let me connect in harmony with the whole. Om Shanti.
Eric Bhai, Shukriya Gayatri Behen, Vastav mein आपने हमें बहुत गहराई से भविष्य के बारे में जानकारी दी। ओम शांति।